बाबा की मुरली सबको याद होगी। बोलो मुख्य टॉपिक क्या था बाबा के पास? संतुष्ट। बोलो संतुष्ट। मणि, मणि में क्या होती है? चमक भी होती है, प्रकाश भी होता है, और मणि बहुत शक्तिशाली भी होती है। हीरे को तोड़ना सहज काम नहीं होता। दोनों तीनों चीजें मणि में हैं। हम सभी संतुष्ट मणिया हैं। और पॉइंट सुनाओ, संतुष्ट मणि के लिए बाबा ने क्या क्या कहा? जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ हैं। बहुत अच्छी बात है ये। और बोलो, संतुष्टता से परिस्थितियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। हैं? माया और प्रकृति की हलचल समाप्त हो जाती है। कौन सी प्रकृति पहले? देह, देह। देह की प्रकृति बड़ी हलचल लाती है ना बीमारियों के रूप में, वो भी ठीक रहती है, सहयोगी रहती है संतुष्ट मणि बनने से। और बोलो बहनों को याद आया कुछ? हाँ, और बोलो, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट रखना है, संतुष्ट बनने में सहयोगी भी बनना है। और बोलो, हाँ? तो भी क्या बोला माता जी ने? भी इच्छा, इच्छा में ही रहती है। ठीक है, और भाई बोलो पीछे आगे की पॉइंट, दूसरे पॉइंट आगे चलो। सब कुछ तेरा तो बहुत पहले हो गया था, कुछ और करो। निर्विघन, किस किस को निर्विघन बनाना? सेंटर्स को। खैर खैर, वो आप न बोलो, मुझे इनसे पूछना है। माताओं के आगे आई कुछ बात या नहीं? हाँ बोलो माताएं, निर्विघन किसे बनाना है? मधुवन को बनाना है, ठीक है? हाँ ठीक बात है। और किसे बनाना है? हैं? सेंटर को बनाना है। और किसे बनाना है? माताएं सारी पीछे बैठ गई हैं। जो उत्तर देने वाले जरा आगे आ जाओ, उत्तर देने वाली बहने आ गया हो। हाँ, मन को निर्विघन। और किसको निर्विघन बनाना है? माताओं ने वो बात सुनी ही नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अपने अपने घर को भी। ये सेंटर निर्विघन बन जाए और आपके घर में विघन भले रहे, चलेगा? नहीं, निर्विघन बनाना है। और बोलो, समस्या प्रूफ, समस्या प्रूफ समाधान स्वरूप। समस्या प्रूफ का अर्थ है ऐसा जीवन जिसमें समस्याएं ना हो, जीने का ढंग ही ऐसा हो कि उसमें समस्याएं कम से कम आए। ठीक बात है ये? कुछ लोगों का जीने का ढंग ऐसा होता है कि हर कदम पर उन्हें समस्या दिखाई देती है। किन्हें? कैसे जीते हैं लोग? जो समस्याओं से घिरे रहते हैं। बोलो, नेगेटिविटी के साथ जीते हैं। और बोलो, कौन सा स्वभाव विघ्नों को जन्म देता है? चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रोध का स्वभाव, बुरा बोलने का स्वभाव, फीलिंग का स्वभाव। ये चीजें आत्मा को संतुष्ट भी नहीं रहने देती और जैसे विघ्नों का आह्वान करती हैं। हम बिल्कुल इसको जोड़ लें, जो संतुष्ट मणि है वही निर्विघ्न है। ठीक बात है। अगर हम संतुष्ट हो जाएं, तो विघ्न स्वतः ही समाप्त होते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, हमें हिलाएंगे नहीं, हमें नष्ट करके नहीं जाएंगे, हमारी खुशी छीन के नहीं जाएंगे, हमारे मन को डिस्टर्ब करके नहीं जाएंगे, बल्कि विघ्न क्या करेंगे, शिक्षाएं देंगे, हमें शक्तिशाली बनाएंगे, माताओं को बोलना है सुनना में जो अनुभवी बनाएंगे, और क्या करेंगे बोलो, पहलवान बनाएंगे, बलवान पहलवान शक्तिशाली। ठीक ठीक ठीक। तो विघ्न पावरफुल या माताएं पावरफुल? माताएं डर डर के बोल रही कि विघ्न बड़े खतरनाक होते हैं। विघ्न पावरफुल या हम पावरफुल? हम पावरफुल हैं। और अगर हम विघ्नों को पावरफुल मान लेते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ये मान के चलना है कि विघ्नों से अधिक पावरफुल हम हैं। क्यों? हाँ ठीक बोल रहे, अब ठीक बोला। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे साथ है। बाबा ने कभी एक बहुत नशे की बात कही है, अव्यक्त मूल्य में यही किया है इसी हॉल की, कि एक और अक्षौहिणी सेनाएं हो और दूसरी ओर तुम अकेले हो तो भी विजय तुम्हारी होगी। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है। लेकिन इसका बहुत अच्छा निश्चय और नशा होना चाहिए। इसमें कठिनाई तब पैदा होती है जब निश्चय संशय में बदलने लगता है। आत्माएं देखने लगती हैं, बाबा उसे भी मदद नहीं कर रहा, उसे भी तो नहीं कर रहा, वो 50 साल से ज्ञान में उन्हें भी नहीं कर रहा है, हमें कैसे करेगा, हमारा गुरु ही अच्छा था। उसके पास जाते थे, माताएं कहती है, मुझे कहती है, हमारा गुरु अच्छा था, उसके पास जाते थे इच्छा पूरी कर देता था, जब बाबा तो करता ही नहीं। क्यों नहीं करता बाबा? नहीं, बाबा हमारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने नहीं आया है, बाबा हमें ऐसा बनाने आया है जो हम सभी की इच्छाएं पूरी करने लगे। बाबा हमें ऐसा बनाने आया है 2500 साल तक कुछ इच्छा करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जो लोग इतना छोटा सोचते हैं कि बाबा ये नहीं कर रहा, देखा मेरा बच्चा फेल हो गया, बाबा ने मदद नहीं की, तो बच्चा पढ़ता खुद नहीं था, परीक्षा बाबा दे के आ जाता था ताकि वो पास होता। ये छोटे विचार, इसका अर्थ है कि हमने बाबा को जाना नहीं है, इसका अर्थ है कि बाबा के कार्य करने की विधि को हमने समझा नहीं है। हम बाबा को भी वैसा ही देखते हैं जैसा वो भक्ति में दिखाई देता था, कि बस बाबा प्रसाद चढ़ा देंगे भोलेनाथ और ये कर देना, नहीं किया तो अगले साल नहीं चढ़ाएंगे, नाराज हो जाते थे। बाबा का कौन सा सीन सबको बहुत अच्छा लगा? याद है माताओं ने देखा, बाबा को जब भोग खिलाया जा रहा था तो बाबा ने चम्मच उन्हें नहीं भरने दी, हटा दिया, खुद भरी और सबको खिलाया। लगा आपको भगवान सबको स्वीकार करा रहा था? लो क्या दिखाता है ये बाबा का, बहुत प्यार। जैसे माँ होती है ना अपने बच्चों के लिए खुद करते, तुम हटो, बाबा भी ऐसे हटा रहा था, हटो मैं खुद भरूंगा। बहुत प्यार की फीलिंग, बहुत गुड फीलिंग सभी जगह चारों ओर लोगों को हुई है कल, जो सामने थे और जो बाहर बैठ के देख रहे थे। बहुत सुंदर फीलिंग सबने, बाबा का एक बहुत सुंदर स्वरूप कल देखा। यही तो बड़ी चीज है ना, संतोष मणि की मुरली तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, मुझे ख्याल है यही बातें 10 बार तो आ गई हैं, है ख्याल, इस सीजन की पहली मुरली में भी, दूसरी में भी, उसे पहले के सीजन में भी, पहली मुरली में संतोष मणि था, संतोष मणियों का प्रकाश सारे संसार में फैलता है, कल कह दिया संतोष मणियों के खजाने में है प्राप्त नहीं कोई शक्ति, ये नई लाइन थी कल, संतोष मणियों के खजाने में है प्राप्त नहीं कोई शक्ति। क्यों संतुष्ट मणियों को शक्तियां मिल जाती हैं? बोलो क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए नहीं। और मूल पे आ जाओ, मूल मूल, क्योंकि उनकी संकल्प शक्ति नष्ट नहीं होती, उनका मन शांत रहता है। संतुष्टता का प्राइज है शांत चित, शांत मन में गहरी शांति, वो बहुत बड़ी प्राप्ति है। शांति को जो खजाने के रूप में जानते हैं, उन्हें अनुभव होता है कि ये बहुत बड़ा खजाना है, उनकी खुशी को कोई छीन नहीं पाता, तो संकल्प वेस्ट नहीं होते, इसलिए शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल चर्चा करना चाहते हैं। संतुष्टता पहले तो दो तरह की, इसको हम ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। एक संतुष्टता है जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना, ये प्रैक्टिकल संस्कार की बात है कि संस्कार ही संतुष्ट रहने का हो। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, ब्राह्मणों में भी हैं, जो संतुष्ट होते ही नहीं, कुछ भी मिल जाए वो कोई ना कोई कमी उनके पास रह ही जाती है। हमें ऐसा नहीं जीवन बनाना है कि बहुत कुछ मिल रहा है लेकिन एक चीज की कमी है तो हम परेशान हैं, जो है उसका आनंद लें। तो सभी को पहली धारणा ये संस्कार रूप में बनानी है कि जो कुछ हमारे पास है, जाम है, जिस स्थिति परिस्थिति में है, जैसा हमारा घर है, जैसी नौकरी धंधे है, संतुष्ट। असंतोष कहीं भी बहुत गड़बड़ करता है। लोग असंतोष कहाँ पैदा होता है? इच्छाओं के कारण इच्छाएं पैदा होती है, लोभ के कारण। धन अगर बढ़ गया तो उसको बढ़ाने की इच्छा हो रही है। एक का केस आया मेरे पास, बहुत पैसे दे दिए किसी को बिजनेस में, लोन देते हैं, अब जिसको दिए उसका खाता सील हो गए, अब ये परेशान, अब हमारे पास क्या होगा? उसके तो गए पर हमारे भी गए, बहुत बड़ी, बहुत पैसा, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। तो ये सब चीजें मनुष्य को अशांत करती हैं। सबसे अच्छी चीज संगम योग पर, सबसे अच्छी कि जिस जो कुछ करने आए हैं वही करना है, बाकी चीजें तो सारी दुनिया कर रही है ना, बाकी चीजें तो हम जन्म जन्म भी करते रहेंगे, पर अब हमें वही करना है जो केवल अभी किया जा सकता है। जो अब के बाद, चाहे हमारा शरीर छूट जाए, चाहे ये खेल पूरा हो जाए, संगम का पूरा हो गया। तो एक तो स्वभाव में संतुष्ट, और असली संतुष्टता कब आएगी जानते हैं आप सब इसका उत्तर है? जब सर्व खजाने प्राप्त हो जाएंगे, हम संपन्न होंगे, सब कुछ मिल गया तब संतुष्ट। जैसे भोजन खा लिया, पेट भर गया, संतुष्ट। उसके बाद अच्छा अच्छा भोजन की थाली आ जाए, हम क्या कहेंगे? हो गया भाई अपना। सब खजानों से संपन्न आत्मा ही सच्चे अर्थों में संतुष्ट मणि है। लोग ऐसा भी सोचते हैं, कई लोग ये प्रश्न किया करते हैं कि हम अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो आगे पुरुषार्थ क्यों करेंगे? बिजनेस हमारा चल रहा है, हम संतुष्ट हैं तो उसको बढ़ाएंगे क्यों? बच्चे संतुष्ट हो गए, पढ़ेंगे क्यों? क्या उत्तर है इसका? इसलिए पुरुषार्थ करेंगे कि संतुष्ट रहना है। अगर पुरुषार्थ न किया तो असंतोष आ जाएगा। संतुष्टता का ये अर्थ नहीं है कि हम उन्नति न करें, हम प्रोग्रेस न करें, लेकिन संतुष्ट रहकर करें। लोग इच्छाओं के वश होकर न करें। अब हम जिस बात की मैं चर्चा करना चाहता हूँ, आप सब उसमें हिस्सा लेंगे। प्रश्न है, कौन कौन सी बातें जीवन में मनुष्य को, ब्राह्मणों को असंतुष्ट करती हैं? कई तो रूठ भी जाते हैं उनके कारण। मांसान की इच्छा एक बात, और ये इच्छा ऐसी है कि जितना मिलेगा उतनी ही बढ़ती जाएगी। फिर और सोचेंगे, फिर और कुछ सोचेंगे, क्या सोचेंगे, इसे क्यों मिला, मुझे ही मिलना चाहिए। फिर दूसरे को मिलता देख खुशी नहीं होगी, केवल मुझे मिलना चाहिए, इसे भी मिल गया तो अपनी खुशी खत्म। ये छोटे विचार हैं, छोटे विचार। हम मान के मांगने वाले नहीं, मान के देने वाले। स्वमान के द्वारा मान को अधिकार से पाने वाले बन जाएं। बाबा बहुत अच्छी बात कहते थे, बच्चे तुम्हें तो स्वयं भगवान सम्मान दे रहा है, तो मनुष्यों से सम्मान लेकर क्या करोगे। बाबा ने कहा एक बार, अपने मंदिरों में देखो, तुम्हें मान देने के लिए भक्त किस तरह दरवाजा खुलने की इंतजार करते रहते हैं, तुम वही हो। तो ऐसा मान जिसको मांगने की जरूरत नहीं, जो दिलों पे राज करते हैं, जिन्हें मान देने के लिए लोग उतावले रहते हैं, दरवाजा खुलने की इंतजार करते हैं, तो मान न मिले इससे असंतोष पैदा न हो। और संकल्प ये रखेंगे, हमें तो स्वयं भगवान सम्मान दे रहा है, दे रहा है नहीं, प्रैक्टिकल दे रहा है। दूसरा असंतोष किस कारण होता है, घरों में चले माता है, अपने अपने घरों में जाओ, कहाँ असंतोष होता है। दूसरों को देखकर भी असंतोष बहुत होता है। घरों में मैं दूसरी बात कह रहा था, आज एक ग्रुप का क्लास करा तो वहाँ वो माताएं खुद बोल रही थी, हरियाणा की थी, कि भाई जी कई माताएं असंतुष्ट होती हैं, उसके घर में ज्यादा दहेज आ गया, हमारे घर में कम आया, पता नहीं कैसी बहू आई, भाग्यवान नहीं है, घर ही नहीं भरा हमारा। तो जो दूसरों के खजानों से अपना घर भरना चाहते हैं, क्या कहेंगी माताएं, ये सब माताओं की समस्या है, भाइयों की नहीं है ना माताओं की। जो दूसरों के खजाने से अपना घर भरना चाहते हैं, उनके घर कभी नहीं भरते। जो संतुष्ट आत्माएं हैं, उनके ही घर भरपूर रहते हैं। तो एक दूसरे को देखकर इन संसारिक इच्छाओं के कारण अपने को असंतुष्ट मणि नहीं बनाना है। ये भी तो है ना, असंतुष्ट भी तो मणियां है, चमकती तो वो भी है, तो थोड़ी चमक काली काली रहती है। और बताओ किसके कारण असंतोष होता है जीवन में, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, ये भी एक बात होती है, असंतोष हो जाता है। क्या याद रखें इसके लिए, हम हमारा कर्तव्य है अपनी बात कह देना। बाकी मानने वालों की ड्यूटी, मानते हैं या नहीं मानते, हमने एक अच्छी बात कह दी। और बोलो किसके कारण असंतोष, हाँ किसी भी प्रकार की कमी होगी तो भी असंतुष्ट होंगे। जैसे मान लो अमृत वेले नहीं उठे, तो भले कितना भी अपने को खुश रखने की कोशिश करें, लेकिन वास्तविक खुशी नहीं होगी। और कोई कमी दिखाई देती है, किसी दिन क्रोध आ गया, किसी दिन मुख से कटु वचन निकल गए, तो भले ही बाहर से कितना भी खुश रहने की कोशिश करें, बाहर से बोले देखा हमने इनको सीधा कर दिया, बस बोल दिया हमने इनको, ये बड़े बोलते थे, लेकिन अंदर में आत्मा असंतुष्ट होगी, खाली होगी। उन्हें महसूस होगा कि तुम जो उछल रहे हो ये उछल खालीपन की निशानी है, भरे हुए की नहीं। भरे हुए होंगे तो क्या निशानी होगी? स्थिर और शांत। कहावत है ना हिंदी में, घड़ा जब पानी से भरा होता है तो छलकता नहीं, और खाली होता है तो पानी बाहर गिरता ही रहेगा। हम भी भरे हुए होंगे तो यह संतोष होगा नहीं। और बोलो, पीछे वाले भाई बताएं कहाँ संतुष्टता होती है? दूसरों की गलतियां देखकर भी होती हैं। और बोलो, सहनशीलता की कमी से भी होती है। और बोलो, नुकसान होने पर भी होती है। और बोले माताएं एक साथ सोती हैं सब, कहाँ संतुष्टि होती है? अब तो मैंने आधा उत्तर दे दिया, खराटों से। खराटों की समस्या अविनाशी समस्या है, इससे बचना बड़ा ही मुश्किल काम है। हमारे पास एक डॉक्टर ही रहते हैं, उनके पास जो भी आता है वो खराटे वाला ही आता है। कहते मेरा तो सोना ही मुश्किल हो गया भाई, पता नहीं कैसा भाग्य है मेरा बेचारे को। उठा तो मुझे पूछा, मैं भी जल्दी उठ के बाहर घूम रहा था, मुझे पूछा वो सुनाई दिया। मैं सोचा भाई भालू वालू की आवाज भी आती रहती है, वो पूछता होगा। देखा इसके खराटे वहाँ होल के उस कोने तक जा रहे थे। और क्या समस्या है? हाँ, बच्चे हमारी क्यों नहीं सुनते? तो हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हमारा मन संतुष्ट रहे। कुछ संकल्प रख लें इसके लिए। इस अंतिम जन्म में हमें वो कुछ मिल गया, बोलो आगे से आप बोलेंगे, हमें वो सब कुछ मिल गया जिसको पाने के लिए हम युगों से इंतजार करते थे, दर दर भटकते थे। अब और कुछ मिले या न मिले, हम संतुष्ट हुए। अपने से बात करते रहे, बाबा से बात करते रहे, बाबा आपको पाकर हम पूरी तरह संतुष्ट हुए। आप आए, हम बहुत सुखी हो गए। तो हमारी संकल्प हमें संतुष्ट करते रहेंगे। असंतोष मनुष्य के जीवन में कहीं भी हो जाता है, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, ये चीजें असंतुष्ट करती हैं। सर्दी गर्मी की बात मैंने कही तो मुझे याद आ गई, तीन दिन पहले एक माता आई जानती वन में, कहा बाबा कहते हैं सर्दी गर्मी में समान रहो, पर मुझे तो सर्दी बहुत लगती है। वहाँ सर्दी हो भी ज्यादा रही थी सवेरे सवेरे, तो मैंने कहा इसका अर्थ ये नहीं है कि सर्दी हो रही है और तुम्हें सर्दी न लगे, धूप हो रही है और तुम्हें गर्मी न लगे, वो तो लगेगी ना। इसका अर्थ है कि इनके प्रभाव से हमारी स्थिति बिगड़ न जाए। समान रहने का अर्थ है कि जब सर्दी गर्मी और कोई मौसम भी बदले प्रकृति का, तो हमारी मनोस्थिति न बिगड़ जाए, तो एक बहुत अच्छी चीज है। अब बाबा ने अमृत वेले के लिए क्या कहा? जो दृढ़ संकल्प धारी हैं उन्हें सहयोग, स्नेह और शक्ति, इन तीनों का अनुभव होगा रोज सवेरे। दिन में होगा या नहीं? क्या कहा बाबा ने? बाबा क्या कर देंगे? ब्रह्मा बाबा, अच्छा वो शायद उस अव्यक्त मुरली में, वो संडे की मुरली में था, तो बाबा दोनों मिल गए ना। तो बाबा वैसे भी किन सबको बहुत अच्छी अनुभूति होगी? जो संतुष्ट मणि होंगे। देखो बाबा से कुछ भी पूछा जा रहा था, कल बाबा के ये दो ही उत्तर थे, संतुष्ट मणि और निर्विघन सेंटर। क्योंकि अगर सेंटर्स निर्विघन हो जाएं, तो क्या हो जाएगा? नहीं, और कुछ, सेवा कई गुनी हो जाएगी। सेवाओं में विघ्न ही सेवाओं के लिए बाधा है। हम पांच बातें निकाल लें। हमें अपने को निर्विघ्न बनाना है, अपने घर को बनाना है, अपने सेवा स्थान को बना, सेवा वित्त स्थान हमारे है ना, मधुबन भी हमारा, सेवा स्थान भी हमारे, घर लौकिक, लेकिन बीज क्या है? हम निर्विघ्न रहें। कहाँ से विघ्न पड़ते हैं? थोड़े में हम चर्चा करेंगे। बीज पर पहुंचे, मेरा, और बीज को पकड़े हैं, मैपन, और बीज की ओर चले आगे। ये सबसे सूक्ष्म बात है। अपवित्रता ही विघ्नों का आह्वान करती है। इस अति सूक्ष्म बात है। चाहे व्यक्तिगत जीवन में विघ्न हो, मैं आपको एक अपनी पर्सनल बात बताऊं। मैंने एक बार 10 साल तक उन घटनाओं का विश्लेषण किया। कौन सी घटनाएं? एक्सीडेंट्स, जो ब्राह्मण परिवार में कहीं भी एक्सीडेंट्स होते थे, और मैंने पाया कि उनका बीज पवित्रता ही था। 10 साल तक मैं इस पर बहुत वॉच किया, इसको ध्यान दिया इस बात पे, तो ये पक्का हो गया कि सचमुच अपवित्रता, उसके कई रूप हो सकते हैं, मैपन भी उसका एक स्वरूप है, सरस्वती इच्छाएं भी उसका एक स्वरूप है, योग युक्त जीवन न बनाना भी अपवित्रता ही है। कईयों का जीवन हो गया है योग मुक्त, योग मुक्त, योग युक्त की बजाय योग मुक्त। तो इसमें क्या होता है, सभी को बिल्कुल क्लियर रहे ये ज्ञान, पवित्रता की शक्ति बिना योग बल के बढ़ती नहीं। आज भी हमारी किससे चर्चा हो रही थी, सन्यासी भी पवित्र है लेकिन रह नहीं पाए, इसलिए सन्यास में एक छोटा सा नियम बनाना पड़ा, वो आपको पता नहीं है, सुन लें आप, कि उनका एक काल होता है ब्रह्मचारी काल, जब उन्हें शास्त्रों का अध्ययन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उनकी जैसी स्टूडेंट लाइफ, और जब उन्होंने सन्यास ले लिया तो दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, वो फ्री है कुछ भी करने के लिए, वो पवित्र रहे या न रहे ये उनकी अपनी इच्छा है। तो अधिकतर सन्यासी पवित्र नहीं रह पाए, और कारण यही है, उनके पास योग बल नहीं था। बिना योग बल के पवित्रता आती नहीं। जिन्होंने अपने जीवन को योग मुक्त कर दिया है, पसंद है सब, योग मुक्त जीवन कितना अच्छा है, जिन्होंने अपने जीवन को योग मुक्त कर दिया है, उनकी इम्प्योरिटी विघ्नों को जन्म देगी ही। जिस सेंटर में, जिस घर में रोज अमृत वेले ज्योति जगती है, समझे ना ज्योति जगना, जहाँ उठकर योग का प्रकाश फैलता है, जहाँ भगवान का आह्वान होता है, जहाँ उसकी शक्तियाँ और वरदान आ जाते हैं, वो जगह निर्विघ्न बन जाती है, वो मनुष्य निर्विघ्न बन जाता है। ये ध्यान रखना है, वो तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत जगह विघ्न आए हैं मैपन के कारण, बहुत जगह विघ्नों ने सबको घेरा है किसी एक आत्मा के क्रोध के कारण। क्रोध इतना भारी कि कोई उनसे बात करना न चाहे, सब छटते हैं। संगठन क्रोध से तो नहीं बनता ना, संगठन तो प्रेम से बनता है, संगठन तो सम्मान से बनता है, संगठन रूहानियत से बनता है। तो कहीं मैपन ईगो हर्ट हो रहा है, अहंकार हर्ट हो रहा है, भावनाएं हर्ट हो रही हैं, तो विघ्न शुरू। यज्ञ में बहुत ज्यादा विघ्न, देखो हम यज्ञ को देखते हैं, कभी विघ्न आते थे बाहर वालों की ओर से। ये किस स्वरूप की बात आप जानते हैं? सिंध में बाहर वालों की ओर से विघन आए, सेवाएं शुरू हुई तो एक विशेष संप्रदाय की ओर से विघन आए। लेकिन अब विघन किन की ओर से आ रहे हैं? ब्राह्मणों की ओर से। और ब्राह्मणों की ओर से आए गए विघन ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि बाहर से जो विघन आते हैं उसमें हम सब दृढ़ता पूर्वक किले की तरह दीवार बनाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब अंदर ही विघन आने लगे, मच्छरदानी के अंदर ही चार मच्छर रह जाए जो बाहर भी न निकल सके और अंदर वालों की खबर ले अच्छी तरह, होगा ना, खतरनाक हो जाएगा। चूहेदानी में चूहे तो मच्छरदानी में मच्छर, यही अंतर होगा। चूहेदानी में चूहे तो मच्छरदानी में मनुष्य। तो सभी लक्ष्य बनाएंगे। बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया है, हम सब अपने से बात करें। मैं यज्ञ को, सेंटर को निर्विघ्न बनाने में क्या योगदान कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? प्योरिटी का किला मजबूत करें तो व्यर्थ संकल्पों की कच्ची ईंटें किले में न रह जाएं। दो चीजों का ध्यान रखेंगे, प्योरिटी का किला मजबूत और व्यर्थ से मुक्त। जो स्थान व्यर्थ से मुक्त है वहीं पवित्रता का प्रकाश भी है और वहां विघन आते नहीं। हम सभी विघन विनाशक हैं। अगर आ भी जाएं तो किन के पास आए विघन? कौन है हम? तो विघन आए विघन विनाशकों के पास, तो क्या होगा विघ्नों का? कागज गिरे आग में तो क्या होगा कागज का? विघ्न आए उनके पास जो स्वयं विघ्न विनाशक हैं, तो विघ्नों को नष्ट होना पड़ेगा ना। या वो नष्ट होंगे जिनके पास आए हैं? नहीं, वो तो गणेश हो गए। तो हम सभी अपने स्वरूप को आगे बढ़ाएं। कौन हूँ मैं? विघ्न विनाशक। तो अगर हमारे पास विघ्न आएंगे भी तो नष्ट होकर जाएंगे, जाएंगे नहीं, नष्ट हो जाएंगे, राख बन जाएंगे। लेकिन हमें मास्टर सर्वशक्तिवान भी बनना है और विघ्न विनाशक भी बनना है। विघ्न बढ़ेंगे या घटेंगे आगे चलकर? विघ्न बढ़ेंगे, संसार विघ्नों से घिर जाएगा और बाबा ने ये बता दिया है। अव्यक्त मूल्यों में रिवाइज होकर भी ये बात आ गई है। विघ्नों के तो जैसे तूफान चलेंगे संसार में, पहाड़ गिरेंगे दुखों के। तो बाबा ने कह दिया, तुम ऐसे विघ्न विनाशक बनो, न केवल अपने विघ्न नष्ट कर सको बल्कि तुम्हें तो संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा। एक जगह बैठ कर अपनी इस महान फीलिंग को बढ़ाते चले। विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति मेरे पास है। है? बोलो, मैंने बताई आता है? या विघ्न आता है तो उनको ना हमें नष्ट करने की शक्ति उनके पास है, उल्टा हो जाता है ना कहीं भी? विघ्नों में इतनी शक्ति है कि विघ्न विनाशक को ही नष्ट करने लगते हैं, बुला देते हैं तुम विघ्न विनाशक हो, ये गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हम सभी विघ्न विनाशक की स्थिति में रहें। बाबा की एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई। बाबा ने कहा, कई बच्चे विघ्नों में इतने उलझ जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि हमें साथ कौन दे रहा है। अगर ये याद रहे कौन हमें साथ दे रहा है तो विघ्नों का फोर्स ढीला हो जाएगा। तो एक ये अपनी तैयारी कर दे सभी, हमें विघ्नों से घबराना नहीं है, विघ्न हमसे घबराए। मैं पहले भी एक बात यहाँ कही थी, समस्याओं को समस्या समझना ही बड़ी समस्या है। जो अपने को इससे मुक्त कर ले, समस्याएं तो आएंगी जरूर। अब ठंड पड़ रही है तो ठंड तो लगेगी, हमने इंतजाम कर लिए ना, टोपी रख ली, मफलर रख लिए, कोट रख लिए। हम सर्दी को दोष देंगे क्या? सर्दी का मौसम है, सर्दी होगी। विघ्नों का भी मौसम है, कलयुग के अंत में क्या होगा, सुखधाम थोड़ा ही होगा। सब ईमानदार लोग मिलेंगे, सब चरित्रवान हो, सब पवित्र हो, होगा ऐसा? आपके घरों में बच्चे हैं, कन्याएं हैं, वो बहुत पवित्र हो, कन्या पवित्र होती है, होगा ऐसा? ये कलयुग का अंत है। यहाँ वो सब हो रहा है और होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था, वो सब यहाँ होता रहेगा। तो हमें अपना भी बचाव करना है, अपने स्थानों का करना है, और अपने स्थानों को ऐसा बनाना है ताकि जो भी वहाँ आए वो विघ्नों से मुक्त हो जाए। बाबा ये दो लक्ष्य रख कर कह रहे हैं हमें, ये बहुत समय से कह रहे हैं ना, कई साल से कह रहे हैं, जोन वालों को खड़ा करते हैं, सब जोन इंचार्ज को। बाबा ने तो चैलेंज दिया हुआ है ना, कोई बना के दिखाए, एक सेंटर को बना के दिखाए निर्विघन। तो ऐसा तो हम न माने कि ये काम होगा नहीं, ठीक है, ऐसा हम न मान ले कि ये काम होगा नहीं। दो लक्ष्य हैं बाबा के, एक तो सेंटर या कोई भी स्थान जब निर्विघन होगा तो सेवाएं तेजी से बढ़ेंगी। जैसे विघ्न आने पर सेवाएं तेजी से नष्ट हो जाती हैं, क्लास के क्लास टूट जाते हैं। कई जगह ऐसा हो गया, बहनों ने जो निमित्त भेजी थी छोटी कन्या, उन्हें गड़बड़ कर दी। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, वहां कोई आता ही नहीं। देख लिया हमने ब्रह्मा कुमारियां कैसी है, एक की गलती से अनेकों का भाग्य खत्म हो गया। और जहाँ सबकी स्थिति बहुत अच्छी हो वहाँ सेवाएं तेजी से बढ़ती जाएंगी। और बाबा ये चाहता है, इम्पोर्टेंट बात है, हमारे मधुबन के सब स्थान, हर शहर में विशेष सेंटर्स और कुछ माताओं के घर भी लाइट हाउस बनने हैं। ऐसे लाइट हाउस मधुबन के लिए बाबा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, वो होगा, हो रहा है और आगे चल के बहुत ज्यादा होगा। आज भी कोई ज्ञान सरोवर देख के गए, मुझे बताया नीचे ज्ञान सरोवर जैसी जगह दुनिया में कोई नहीं है। लोगों को पता नहीं क्या फीलिंग होती है भाई, हम तो वहाँ रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता उन्हें क्या दिखता है वहाँ। मधुबन सर्वश्रेष्ठ स्थान है ना, ये जगह जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ जैसे वाइब्रेशन संसार में कहीं नहीं हो सकते, और यहाँ बहुत अच्छी योगी आत्माएं भी हैं। लोग केवल उन्हें देख लेते हैं जो व्यर्थ में रहते हैं, नहीं, योगी आत्माएं भी बहुत हैं यहाँ। और सबको याद रहे, एक योगी 100 योगियों से पावरफुल होता है। योगी समझिए ना, मैं और सब नहीं बोलूंगा, जो योगी होते भी योगी नहीं उन्हें भी योगी कहेंगे। एक योगी 100 योगियों से अधिक पावरफुल होता है। जैसे हमारे मधुबन है, यहाँ 10-12 आत्माएं भी बहुत अच्छा योग युक्त रहती हो तो ये स्थान लाइट हाउस, यहाँ जो भी कदम रखेगा उसे साक्षात्कार होने लगेंगे, उसके भाग्य की रेखाएं बदलने लगेंगी, उसके टेंशन समाप्त होने लगेंगे, उन्हें अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणाएं मिलने लगेगी। ये हो रहा है और बहुत होगा, बहुत होने वाला है। इसलिए बाबा चाहते हैं सेवा केंद्र और घर ऐसे निर्विघन बने, वहाँ योग का प्रकाश ऐसा फैले, वहाँ योग युक्त होकर शक्तियों के वाइब्रेशन से ऐसे निर्माण करें आप कि आने वाले समय में जब संसार में दुखों के पहाड़ गिरे, लोग दुखी आत्माएं आपके घर में आए, 10 मिनट बैठे और क्या लेके जाए, सुख और खुशी लेकर जाएं। ये शब्दों से नहीं होगा, शब्दों से काम नहीं होगा, अशांति इतनी बढ़ेगी, दुख इतने बढ़ेंगे, कोई भी ज्ञान सुनने को तो तैयार ही नहीं होगा, हम सुना भी नहीं पाएंगे। ज्ञान सुनाने के लिए भी तो एक माहौल चाहता है ना, सुनने वाले तैयार ना हो तो हमारा ज्ञान भी भूल जाता है, होता है या नहीं? और सुनने वाला बहुत इच्छुक हो तो हम नई नई बातें सुनाते हैं। तो सभी अपने जीवन को भी चलता फिरता तीर्थ बनाएंगे, जो भी बना सके चलता फिरता तीर्थ, चेतन मूर्तियां, ताकि जिधर दृष्टि जाए क्या हो, सुख फैलता चला जाए, जिधर देखें उधर लाइट ही लाइट लोगों को दिखाई दे, जिधर कदम रख दे वहां के विघ्न नष्ट हो जाए। ये होने वाला है, हम में से बहुत सारी आत्माएं ऐसी निकलेंगी, एक ही नहीं बहुत निकलेंगे, जिनके द्वारा विनाश काल में ये महान सेवा होगी। इतनी मृत्यु होंगी कि लोग रोना भूल जाएंगे, हिंदी में उसको कहते हैं सदमा लग गया, सदमा लग गया, रो भी नहीं रहे, हंस भी नहीं रहे, सोच भी नहीं रहे, डेड हो गए, जिंदे हैं पर डेड, न कुछ खा सकते न बोल सकते न रो सकते न हंस सकते, वो स्थिति हो जाएगी। डॉक्टर कहेंगे रुला दो इन्हें तो ठीक हो जाए, कोई रुला नहीं पाएगा, इस सदमा कोमा से भारी स्थिति है। ऐसे में हमारे वाइब्रेशंस दूसरों का कल्याण करेंगे। अब आप सोच लो, आप में से कौन कौन ऐसी महान सेवा, ये भी बाबा की सेवा होगी ना, उसके बच्चों की सेवा होगी, क्योंकि सब उसके बच्चे होंगे ना जो चिल्लाएंगे, भले उन्होंने पाप किया है वो भी जानता है, हम भी जानते हैं, पर डॉक्टर तो ये नहीं कह सकता ना कि जी मरीज को देखकर दर्द हो रहा है ठीक है बड़े पाप किए अभी भुगतो। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर तो इलाज करेगा ना, हम बन जाएंगे डॉक्टर, हम बन जाएंगे सुख देने वाले, हम बन जाएंगे सबके कल्याणकारी। तो चाहे कोई कैसा भी पापी हो, हमें उसे दुखों से मुक्त करना ही होगा, बाबा ये चाहते हैं। सोच लो सभी माताएं अपने घर को ऐसा बनाए, और ये सोचने की जरूरत नहीं कि हम तो अकेले ज्ञान में हैं, बाकी पांच तो न जाने क्या क्या खाते हैं, मच्छियां खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, हम अकेले क्या करेंगे। जिसको ये प्रश्न हो, अकेला शिव बाबा कितने हैं, एक, और ब्रह्मा बाबा, नारायण, श्री कृष्ण, एक एक ने कमाल किया है ना। विवेकानंद कितने थे, एक एक ने काम किया, महात्मा गांधी, हम भी एक और हमारा एक। इसलिए कोई ये ना सोचे हम अकेले भला क्या करेंगे, अकेले कमाल कर सकते हैं, एक करने वाला लीडर चाहिए, उसके पीछे आने वाले बहुत होते हैं। इसलिए बाबा ने सुंदर शब्द बोले, दृढ़ संकल्प धारी आत्माओं को बाबा की सवेरे सवेरे वो पालना मिलेगी। तो आज भी किया होगा पर रात देर भी हो गई हो, कल से सभी सवेरे बाबा का प्यार, सहयोग और शक्ति अनुभव करेंगे। सहयोग किसमें, पहला सहयोग श्रेष्ठ पुरुषार्थ में। देखो मेरा तो ये मानना है और विश्वास है कि बिना प्रभु कृपा के कोई योगी भी नहीं बन सकता, आपकी क्या विचार है? मेरा तो ये है भाई, मैंने बहुतों को देख लिया जोर लगाते योगी बनने के इच्छा रखते हुए, इच्छा होते भी नहीं बन पाते, और अगर हम भगवान के दिल को जीत लें, अगर उसके वरदानों के पात्र बन जाएं, अगर उसके प्यार के अधिकारी बन जाएं, तो बस वो एक दृष्टि डालता है और योगी भव का वरदान दे देता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम अपनी सेवाओं से, हम अपने मधुर स्वभाव से, हम अपनी सुखदायी नेचर से, हम अपनी सत्यता और पवित्रता के बल से भगवान के दिल को जीते हैं। तो फिर देखो उसका सहयोग पुरुषार्थ में, उसका सहयोग समस्याओं को समाप्त करने में, उसका सहयोग आपके घरों को निर्विघ्न बनाने में, उसका सहयोग बेफिक्र बादशाह बनकर रहने में दिखता रहेगा, रोज दिखेगा, प्यार भासता रहेगा। वो ऊपर हम नीचे, लेकिन प्यार की फीलिंग रहेगी। दोनों के बीच में दूरी बहुत है, पर दूरी खत्म हो जाएगी। मैं प्यार जहाँ बहुत होता है दूरी नहीं रहती, और शक्तियों की सारा दिन अनुभूति होगी। समस्या आ गई तो फील होगा हम शक्तिशाली हैं। माया का किसी का सामना करना है, फील होगा हम बहुत शक्तिशाली हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे साथ हैं। तो सभी कल से सवेरे बहुत अच्छे अनुभव करेंगे, लेकिन अनुभव होंगे दृढ़ संकल्प धारी आत्माओं को। दृढ़ संकल्प किसमें? मुझे स्वरा संतुष्ट मणि बनकर रहना है, मुझे बेफिक्र बादशाह बनकर रहना है, मुझे अपनी ये कमजोरी नष्ट कर देनी है। ये बात बहुत अच्छी तरह सभी फील करें। अगर हम अपनी किसी कमजोरी को नष्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा? दृढ़ संकल्प है तो बाबा के सहयोग की अनुभूति होगी। केवल सवेरे नहीं, उस कमी को समाप्त करने में वो हमें सहयोग कर रहा है, इसकी बहुत अच्छी अनुभूति हो जाएगी। तो मुरली को फिर से सब पढ़ लेंगे ना, जब तक दूसरी मुरली आती है। इसकी मुख्य पॉइंट्स हमारी शालातों में रहें, हमें बेफिक्र बादशाह बनकर भी रहना है, ये अनुभव सबको खूब करना है कि अपने मन के बोझ, अपने मन की चिंताएं, बातें अगर हम बाबा को सौंप देते हैं तो वो कैसे हमें मदद करता है। बिल्कुल उसके मन में हमारे लिए बहुत प्यार है, जैसे माँ का प्यार बताया नहीं जा सकता ना, उसका प्यार भी अथाह है। चलो ओम शांति। प्रभु का ध्यान कीजिए।